आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। कबीर का वचन है, बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश। जिनका बहुत पसारा किया हुआ है, जो बहुत बहुत जगहों पर अटैचमेंट कर चुके हैं, निमित्त बन चुके हैं, उन लोगों के लिए स्वर्णमय अक्षर हैं। बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किए वे भी गए निराश। बहुत पसारा करने से क्या होता है? बहुत पसारा करने से हमारी जो चेतसा है बहुगामिनी हो जाती है, बिखराव वाली हो जाती है। और बिखराव वाली जो चेतसा है वो हमको अपने घर से दूर ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का वचन है कि अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से, अन्य भाव से नहीं, अनन्य भाव से। हम लोग बिखर गए हैं, बट गए हैं, हमको पता ही नहीं कि हम पढ़ते किस लिए हैं। पढ़ते पास होने के लिए, पास होते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, और खाते हैं जीने के लिए। जीते किस लिए उस बात का किसी को बताई नहीं। ध्यान देना जरा, हम कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते किस लिए है? नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं, बस जीते हैं। कोई ज्यादा चतुर होगा तो बोलता है जीते हैं मरने के लिए, लेकिन गहराई से देखो कि जीते हैं आप मरने के लिए नहीं। मौत किसी को पसंद नहीं है। 60 वाला, 70, 70 वाला, 100, 100 वाला, 108 की माला जपना चाहेगा, 108 भी हो गए तभी भी वो गहराई से मौत नहीं चाहता। हम जीते हैं मुक्त होने के लिए, ईमानदारी की बात है। नन्हे मुन्नों से पूछो, इतवार आने को है तो कितनी खुशियां छा जाती है। जेल में जो सड़ रहे हैं उनको जब पैरल पर छुट्टी का अथवा एकदम मुक्त होने के आदेश आता है तो उस दिन कितने खुश होते हैं। बैठे बैठे दो तीन घंटे सत्संग सुनते सुनते जब छुट्टी कर देते तो कैसा फ्रेशनेस आ जाती है। हालांकि है तो बढ़िया काम, तो मुक्तता इतनी पसंद है कि रग रग में एक तोता आकाश में उड़ा जा रहा है उसको पकड़ के सुवर्ण के पिंजरे में डाल दो। खाने पीने के लिए तुम्हारे ऊंचे से ऊंचे कीमती फल फ्रूट धर दो, स्वर्ण की कटोरी में पीने के लिए पानी दे दो, लेकिन वो जो अभी अभी मुक्त गगनगामी पोपट आया है उसको उसमें डाल दिया, जब तक उसके अंदर की लघु ग्रंथियां बंद नहीं जाती तब तक उसको खाना पीना हराम हो जाएगा। मैंने देखा चिड़िया भूखे में भूखे ऐसे जंतुओं को, ऐसे प्राणियों को देखा कि वो तड़फ रहे रोटी के टुकड़े के लिए। धीरे धीरे रोटी डालते डालते मैं उनको कमरे में ले गया और कमरा बंद कर दिया। फिर उनके आगे मिठाइयां रखो तो उनके लिए जहर हो गई, बस तड़पते बाहर निकलने के लिए किसको ले भी। तो हर जीव जीता है मुक्त होने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं। हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं मुक्त होने के लिए। लेकिन मजे की बात है, मुक्त होने के लिए तुम जीते हैं लेकिन आज तक मुक्त होने के रास्ते पर कदम नहीं रख पाए। गए मंदिर में, गए मस्जिद में, गए गिरजाघर में, गए तीर्थों में, एक आश को पूरी करने के लिए अथवा एक इच्छा को छोड़कर 10 इच्छाएं बुन ली इर्द गिर्द। शुभ कर्म करते हैं लेकिन शुभ कर्म भी ऐसा ही करते हैं कि मुक्ति के बजाय बंधन ही बढ़ जाए। समेटने के बजाय हम स्वयं को बिखेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास कुछ समझदारी भी है, ऐसे लोगों के लिए ये दोहा जो कबीर जी का है स्वर्ण अक्षरों से लिख लेना चाहिए अपने हृदय की डायरी में। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। क्योंकि जगत का तुम कितना भी बहुत पसारा करोगे लेकिन वो उसमें आशा तृप्त नहीं रहेगी, आशा निराशा में ही बदलेगी। जानसुत राजा की कथा अपने साधक जानते हैं। जानसुत राजा बहुत पसारा किया और फिर पसारा करते करते धन अधिक होने पर फिर उबान आई तो दानी बन गया। दान करते करते उसको एक ऐसा शौक चढ़ गया कि मैं ऐसे नदी तालाब बावड़ियां करवा दूं, ऐसे भोजनालय बनवा दूं कि कोई भी आगंतुक साधु संत भिखारी गांव मेरे गांव में प्रवेश करे तो किसी के वहां हाथ फैलाना उसको न पड़े। मेरे ही उस भोजनालय में, मेरे ही अन्न क्षेत्र में, सदाव्रत में वो भोजन किया करे। महाराज ठहर ठहर उसके भोजनालय सदाव्रत अन्न क्षेत्र खुल गए। गांव के इधर उधर के आलसू लोग भी खाते थे, आगंतुक साधु संत भी खा लेते थे, रह लेते थे उसकी धर्मशाला में। पुण्य कर्म तो है ही है, दान अपनी जगह पर अच्छा है ही है। से करते करते दो फकीर घूमते घामते राजा जानसुत के राज्य में पहुंच गए। मैं फकीर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो बाबा जी नहीं, दो फकीर। वेश तो बाबा जी का था, फकीर का मतलब है जिसने अपने स्वरूप के विषय में जो संशय है उसकी फाकी कर ली। उसको फकीर कहा जाता है। तो ऐसे दो फकीर घूमते घामते राजा जानसुत के राज्य में पहुंचे और उनके सदाव्रत में अन्न खा लिया। उन्हीं की बनी हुई धर्मशाला में उनको आराम करना पड़ा। तो वो जो फकीर थे ब्रह्मवेता थे, ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि इतनी सुव्यवस्था है, इतना दानी राजा है, इस दानी राजा को दान का मान छुड़ाना जरूरी है। पहले पापीपने का मान होता है, फिर पुण्यात्मा का भी मान होता है। कर्ता मौजूद रहता है, पहले विलासीपना है, निर्धनपना है, अनपढ़पना है, फिर बड़ा हुआ। पहले निर्धन था अब धनवान, पहले कंजूस था अब दाता, पहले अप्रसिद्ध था प्रसिद्ध। लेकिन ये सब परिच्छिन्न मान्यताएं संसार से मुक्त नहीं करेगी। जानसुत राजा का पुण्य परिपाक को उपलब्ध हुआ होगा, जानसुत के अन्न को ग्रहण करने के बाद उन बाबा जियों के मन में थोड़ा ख्याल आया कि इसको थोड़ा कर्मों के जाल से ऊपर उठाना चाहिए। दान तो करे, पुण्य तो करे, लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ ईश्वर का खजाना आत्मज्ञान जो है वो जब तक नहीं मिलेगा तो पुण्यों का फल फिर स्वर्ग में जाएगा, सुख भोगेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जन्मेगा। सुख भोगने के लिए भी भोग देना पड़ेगा, दुख भोगने के लिए भी समय देना है और सुख भोगने के लिए भी समय देना है। अपने को खर्च करना है। सुख कोई सुख में अपने को खर्चता है, कोई दुख में अपने को खर्चता है, लेकिन खर्च होता है। अपने आप का खर्च हो जाना एक बात है और अपने आप की खबर हो जाना दूसरी बात है। अपने आप को कोई अच्छे कर्म में खर्चता है, अपने आप को कोई बुरे कर्मों में खर्चता है। बुरे कर्मों में खर्चने वाले का ज्ञान में, साधना में, साक्षात्कार में, मुक्त अवस्था में अधिकार नहीं। अच्छे कर्म में जो अपने को खर्चता है उसका अधिकार है। ये कृष्ण बात बता रहे हैं। आरुरुक्ष मुनेर योगम, जो योग में आरूढ़ होना चाहता हो, कर्म कारणम उच्चते, उसके लिए काम, उसके लिए कर्म कारण है। जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं किए जाते हैं, पुण्य कर्म किए नहीं जाते, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता और शुद्ध अंतःकरण
के बिना जिज्ञासा पैदा नहीं होती। अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान के वचन नहीं ठहरते। आरुरुक्ष मुनेर योगम, जो योग में आरूढ़ होना चाहता हो, कर्म कारणम उच्चते, उसके लिए कर्म कारण है। जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं किए जाते हैं, पुण्य कर्म किए नहीं जाते, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता और शुद्ध अंतःकरण के बिना जिज्ञासा पैदा नहीं होती। अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान के वचन नहीं ठहरते। अशुद्ध अंतःकरण में भीतर को ठठोलने की, भीतर को खोजने की योग्यता नहीं होती। अशुद्ध अंतःकरण में विश्रांति नहीं होती और विश्रांति वालों की बात ठहरने की क्षमता भी नहीं होती। अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा परायण होना ठीक है, कर्म करना अच्छा है, लेकिन वो कर्म करते करते जो शुद्ध अंतःकरण हो, तो शुद्ध अंतःकरण को फिर शांत अंतःकरण भी बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध एक दिन अपने भिक्षुकों के आगे बड़े गूढ़ विषय का प्रतिपादन कर रहे थे। नितांत गूढ़ था और काफी लोग चाह से सुन रहे थे। अब बुद्ध एकाएक चुप हो गए, मौन हो गए, इतने गंभीर हो गए कि किसी की हिम्मत न हुई बुद्ध से पूछने की, तथागत आप एकाएक क्यों चुप हो गए भगवान, ऐसा कौन सा विषय जिस पर आप प्रकाश नहीं डाल सकते। उस दिन सभा बिखर गई, धीरे धीरे लोग सब चले गए। दूसरे दिन बुद्ध ने जब प्रवचन चालू किया, लोगों ने आदर से सुना, फिर प्रश्न उत्तर हुआ तो किसी भिक्षुक ने पूछा कि भगवान कल आप अधूरे विषय को छोड़कर एकदम मौन हो गए, तूष्णी हो गए, नितांत तूष्णी हो गए, क्या कारण था? ये हमें संदेह होता और इसी विचार के हम कल रात को सब अंदर अंदर चर्चा कर रहे थे, हमारी हिम्मत न थी आपसे पूछने की। तथागत ने कहा कि मैं जब प्रवचन कर रहा था तो तीन भिक्षुक के हाथ और पैर हिल रहे थे, कई लोग बैठे होते ना, तो उनके हाथ और पैर हिल रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं इतना गहराई से बोल रहा हूं और वे इतने बाहर हैं, मैं इतना भीतर हूं और ये इतने बाहर है, सौदा बनेगा नहीं। तो जब सौदा न बने तो माल दिखाना भी बेकार है और देना भी बेकार है। आदमी इतना चंचल होता है कि उसकी चंचलता की खबर उसका स्थूल शरीर काम बता रहा है। जितना जितना आदमी बिखरा है उतनी उसकी शक्तियां क्षीण होती है, और जितना जितना वो आदमी अंतर्मुख है उतना उसकी योग्यता क्षमता शक्तियां विकसित होती है। तो बुद्ध ने कहा मैं उसी लिए चुप हुआ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता था चुप हुआ, लेकिन मैंने देखा कि ये नहीं जानने वालों के बिना क्षमता वालों के आगे मैं बोल रहा हूं, तो बोलना मेरा व्यर्थ है, मेरी वाणी अजाई खर्च नहीं करूंगा। तो हाथ पैर हिल रहे हैं तो ये आदमी के भीतर के मन की अशांति के दर्शन देते हैं, और अशांति तब होती है जब शूद्र देह में अहंता हुई और देह के साथ संबंधों में ममता हुई, तब अशांति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जानसुत राजा की बात याद रखने जैसी है। भगवत गीता के छठे अध्याय में के महात्म में रैंक मुनि का प्रसंग आता है। ये जानसुत राजा पामर भी न था, बुद्धू भी न था और बुद्ध भी न था, बीच में हिलोरे खाता था। दो फकीर जब उसके राज्य में रहे और उसका अन्न ग्रहण किया और धर्मशाला में, उसी के धर्मशाला में सोए, तो फकीरों को हुआ कि इस राजा को कुछ सदुपदेश मिले, क्या किया जाए। फकीरों का संकल्प काफी हो जाता है। उसी रात जानसुत राजा ने स्वप्न देखा, आकाश मार्ग में दो हंस उड़े जा रहे। कथा कहती है कि उपले हंस को नीचे के उड़ने वाले हंस ने कहा कि और आगे मत जा, ऊपर ये जानसुत राजा का इलाका है, ज्यादा ऊपर जाएगा तो जानसुत राजा के तेज से तू भस्म हो जाएगा। तब वो हंस कहता है, चल रे पागल, जानसुत राजा का तेज ऊपर नहीं है, ऊपर तो खुला आकाश है, मानो शांत ब्रह्म है, ऊपर तो ब्रह्म परमात्मा का तेज है, वो जलाता नहीं है, वो पापों को जलाता है, वो अशांत नहीं करता, वो शांति दाता है। ये ज्ञानवानों का तेज है, ज्ञानवान की दृष्टि जब ब्रह्माकार होती है तो ब्रह्म लोक तक की उसकी वृत्ति फैल जाती है बुद्ध पुरुषों की। तो ये बुद्ध पुरुषों के तेज का इलाका है, ये बुद्धू के तेज का इलाका नहीं है। बुद्धू का तेज होता है तो बुद्धू का अहंकार बढ़ता और दूसरे को शोषता है, और बुद्ध का तेज दूसरे को आत्मीयता से उठाता है और दूसरे को बुद्धत्व के तरफ ले जाता है। तो ये बुद्धू का तेज नहीं है, ये बुद्ध पुरुषों का तेज है। जानसुत राजा का राज्य तो छोटा सा है, इस राज्य पर तो कितने राजा आके चले गए, मेरी पृथ्वी, मेरा मकान, मेरा दुकान कर करके चले गए। कबीर कहते हैं, बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। तो जानसुत का तेज तो निराशा में बदलने वाला है, और मेरा, मैं जहां उड़ रहा हूं वहां निराशा नहीं है, क्योंकि वहां आशा ही नहीं है। जहां आशा होती वही निराशा होती है, वहां कोई आशा नहीं है, वहां तो केवल राम ही राम है। आशा तो एक राम की और आश निराश। जानसुत स्वप्न देख रहे हैं और ये संवाद सुन रहे हैं। सुबह हुआ, जांच करवाई कि अपने गांव में कोई ऐसे महापुरुष हैं, कोई ज्ञानी। देखा कि कल दो फकीर आए थे, सुबह सुबह चले गए। वजीरों को भेजा कि कोई संत पुरुष हो, कोई फकीर हो, उनकी खोज करो। जांच करते करते सीआईडीओ ने बताया कि रैंक मुनि नाम का एक बुद्ध पुरुष है, लेकिन महाराज उसका हाल तो ऐसा है कि आप उसके आगे खड़े नहीं रह सकते। बैलगाड़ी का चलाने का धंधा करता, घर बार है नहीं, रात को बैलगाड़ी के नीचे पड़ा रहता है। जानसुत राजा ने उस फकीर के पास जाना स्वीकार किया। गए, 600 अशर्फियां खचरी पर भराकर जाकर भेंट धरी और बोला, महाराज मुझे ब्रह्मज्ञानियों का तेज बताओ, ब्रह्मज्ञान का तेज मिल जाए, ऐसा कृपा करो। ये 600 अशर्फियां मैं आपको उसके बदले में देता हूं। रैंक मुनि ने डांट दिया, चल रहे भिखारी कहीं का, तू ब्रह्म विद्या 600 अशर्फियां देकर लेने आया है? भोय सुवाड़ू, भूखे मारू, ऊपर थी मारू, मार इतलू करता जो हरी बजे तो करी नाखू निहार। तू 600 अशर्फियों से उस ब्रह्म को जानने को आया है? हमारा ब्रह्म इतना सस्ता नहीं। कवि ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। 600 अशर्फियां नहीं, लेकिन अपने आप को देना पड़ता है। सुनाई थी वो कथा कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा था, सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पुण्यों से आकर्षित होते हुए प्रारब्ध वेग से आ रहे थे। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाने का संकल्प किया तो सूक्ष्म रूप में देवता लोक आए और देवताओं ने सुखदेव जी को प्रार्थना की कि आपका शिष्य जो परीक्षित है उसको हम स्वर्ग का अमृत पिला देते हैं, और इसके बदले में आप हमको ब्रह्म विद्या का अमृत पान कराइए। सुखदेव ने कहा, तुम देवता बड़े चतुर चालाक हो, स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं और ब्रह्म विद्या का अमृत पीने से जन्म मरण नाश होते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी बहिर्मुख होता है, विलासी होता है, और साधना का अमृत पीने से आदमी अंतर्मुख होता है और परमात्मा गामी होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी विषयगामी होता है, और सत्संग का अमृत पीने से आदमी अंतर्मुख होता है, परमात्मा गामी होता है। तो तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेने को आए हो, ये सौदाबाजी नहीं चलेगी, तुम चले जाओ। देवता लोगों को वापस कर दिया। तो जानसुत राजा ने जब 600 अशर्फियां ऑफर देकर और बदले में चाहा, तो इस विद्या का अदला बदला नहीं होता है। ये विद्या का तो सच पूछो तो साधक और संत के बीच एक निर्दोष प्रेम जब छलकता है, तब दिल ढुलता है, दूसरे दिल में भर जाता है। मजे की बात है, कितना भी ढुले फिर भी वो दिल खाली नहीं होता और हजार हजार घड़े भर जाते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक दिया जले, फिर उस दिए से हजार हजार दिया जले, फिर भी उस जले हुए दिए की लौ कम नहीं होती। हो सकता है कि जले हुए दिए की लौ कम हो जाए, तेल के आधार पर है और तेल परिचिन्न है, वो परमात्मा परिचिन्न नहीं है, वो असीम है, वहां कुछ खुटता नहीं है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम। ओम ओम। तो यहाँ आज श्री कृष्ण का वचन है, आरुरुक्ष मुनेरे योगम, योग में यदि आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो, फिर भी फल की इच्छा हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो निष्काम भाव से करते हैं, देश की सेवा करते हैं। देश की सेवा करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने देश को बनाया है, कहीं न कहीं कमी रख दिया है, हम सेवा करके वो कमी निकाल के लोगों को सुखी कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। देश की सेवा, कुटुंब की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब सेवा, जब तक तुमने गीता को ठीक से समझा नहीं, बुद्ध पुरुषों का सानिध्य किया नहीं, तब तक मन तुमको सेवा के बहाने अपनी इच्छा तृप्ति में आपको बांटता रहेगा, बिखेरता रहेगा। और हम बिखरते बिखरते यहां तक पहुंच जाते हैं कि लोगों की नजरों से तो हम धनी हो, संत हो, प्रसिद्ध हो, सेठ हो, शाहूकार हो, लेकिन अपने आप में हम देखते तो कुछ न कुछ खटकता रहता है, कुछ न कुछ कमी होती रहती है। कमी तब दिखेगी जब कमी वाले में हम बैठेंगे, और पूरा तब दिखेगा जब हम पूरे में बैठेंगे। अंतःकरण और शरीर, मन, शरीर और संसार, ये प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति कोई दिन पूरी नहीं है, और जब तक हम संसार में, शरीर में या अंतःकरण में बैठे हैं, तब तक हमें पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। अभी कह देते हैं कि बस SSC पास हो जाए, बस शांति बापू, परीक्षा से पेन ने हाथ डालो, बस बीजू कहीं नहीं मांगतो। भले बैला, गंगा माई ने कृपा थी, वरदादा ની દયા થી, તારી મહેનત થી જે તે કહો તું પાસ થઈ જા, થઈ ગયો પાસ, પછી કે કેમ કે બસ બહુ સારું થઈ ગયું, પેન રાખો, હવે કે બીજું કઈ નથી જોતું, પણ કોલેજમાં દાખલા મળી જાય બસ એટલી જ વાત। ચલો कॉलेज में भी हो गए, LGVG करते करते डॉक्टरी कोर्स लिया और MBBS भी हो गए। अब क्या हाल है कि हमारी पोस्टिंग जरा बड़ी सिटी में हो तो ट्रेनिंग लेने में मजा आए, पोस्टिंग बड़ी सिटी में हो गई, फिर बापू अब सर्विस नहीं, अपना दवा खाना खोले तो अच्छा है, दवा खाना अपना खोला, अब आप तृप्त हो गए। जिन्होंने अपना दवा खाना खोला है और देह छुरी घुमाते रहते हैं, सेवा के बहाने वाड़ीलाल में जाते हैं, VS में जाते हैं, और जगह जाते हैं, और फिर वहां से चुन चुन के मुर्गे अपने उसमें भरते कटाकटी करते हैं, और माड़ी पे माड़ी है, कार है, दो कार है, चार कार है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, अपना प्लेन है, ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूं, फिर भी उनकी गहराई में देखोगे तो तब कबीर का वचन याद आएगा अच्छी तरह से, बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। रात्रि को हम सो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई पसारा नहीं होता, सेठ नौकर राजा रंक सब एक अवस्था में, फुटपाथ वाला अथवा एयर कंडीशन बंगले में आराम करने वाला, प्रारंभ में वो अपने को सुखी मानता, वो अपने को दुखी मानता, मान्यता अपनी वृत्ति की है, हो सकता है फुटपाथ वाला बोले अरे सेठिये लोग तो क्या एयर कंडीशन में सोते हैं, कभी गर्मी पड़ी तो बीमार, अपने तो फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे हैं अपने सुखी, उसकी मान्यता से वो सुखी भी हो जाए। और सेठ बोले क्या तो अपने शू एयर कंडीशन ने भी जूती जो तो आजे बहु गर्मी छे, मशीन बगड़ी छे, लाइट आई नहीं, हवे मारू के भाई बन्यू। तो इस प्रकार की वो वृत्ति करेगा तो सेठ एयर कंडीशन में होते हुए भी वो हार्ट कंडीशन में हो, और वो फुटपाथ पे होते हुए भी सुखी हो सकता है, लेकिन फुटपाथ सुख का कारण नहीं है, एयर कंडीशन दुख का कारण नहीं है। वेदांत तुम्हें एयर कंडीशन नहीं छुड़ाता, वेदांत तुम्हें फुटपाथ पे नहीं भेजना चाहता, लेकिन वेदांत चाहता है कि जिस समय जो अवस्था आए वो अवस्था संसार की है, शरीर की है, मन की है, तुम इन सबको सत्ता देने वाले हो, तुम स्वामी होकर सेवक मत बनना। तुम अपनी महिमा, अपनी मोहर जिसको जिस प्रकार की लगाते हो वह चीज वैसी हो जाती है। एक आदमी शमशान के पास रहता था, बड़ा डरता था, माँ बाप की मिलकत थी, मकान वहां रह गया, बच्चा कहीं पढ़ लिख के आया, सुना था भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, अब शमशान से गुजर के जाना पड़ता है, दोपहर होती 10 बजते 10:30 बजते तब जाता, और शाम को जल्दी भागा भागा घर पहुंच जाता, क्योंकि बीच में मशान पड़ता है, कोई भूत न पकड़ ले, कोई प्रेत न आ जाए, कोई हवा कौवा न खा जाए, बड़ा भयभीत रहता था। महाराज समय बीतता गया, धड़कन तो चालू रही, गांव में घूमते घामते कोई बाबा जी आए, बाबा जी को कहा कि मशान में से मैं गुजरता हूं ना, मेरा बस खाया पिया सब खून लेवल हो जाता है, आज वो क्या। बाबा जी ने देखा कि इसको मन में घुस गया कि मशान में कोई है भूत प्रेत, पकड़ लेगा मार लेगा। बाबा ने कहा तू चिंता मत कर, आकाश बांधू, पाताल बांधू, जल बांधू, थल बांधू, तेज बांधू, पृथ्वी बांधू, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, फूंक मार इसको, कागज को फूंक मारी। और बाबा ने अपना कुछ किया जो कुछ उसको जरा मानसिक असर हो जाए, बाबा ने कुछ ऐसा वैसा भोज पत्र पर लिखा और ताबीज में डाल दिया, और बोले इसको अगरबत्ती कर, इसको चंदन लगा, इसको ये कर, इसको जितनी फॉर्मेलिटी लंबी चौड़ी उतना मन को हुआ कि ये कुछ है विशेष। बोले देख ये तो बांध दे, और दिन को तो क्या रात को 12 बजे निकल, 2 बजे निकल, तेरे आगे भूत प्रेत आएंगे तो भस्म हो जाएंगे, मैं कोई जैसा तैसा बाबा नहीं। महाराज उसको असर हो गई, अब तो सुबह निकलने लगा, कभी कभी अंधारे में निकलने लगा, रात्रि को निकलने लगा, उसको पक्का हो गया कि ये ताबीज बस इसकी बराबरी कोई नहीं है, भूत प्रेत क्या आ सकते, भाग गया भूत प्रेत। लेकिन महाराज नहाता था तो कहीं ताबीज गुम न हो जाए, सोता था तो कोई ताबीज निकाल न ले, बातचीत करता था तो बार बार ताबीज के तरफ देखता था कि ये छीन न ले, तो एक भय को निकालने के लिए दूसरा भय घुस गया, निर्भय नहीं हुआ, उसने संशय की फाकी नहीं की। हम मंदिर में जाते हैं इसलिए कहीं नौकरी न छूट जाए, हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कहीं नरक में न पड़ जाए, हम किसी से रिश्ता नाता रखते कि कहीं रेड ना आ जाए, हम किसी से बातचीत करते हैं उससे अच्छा संबंध बनते कि फलाना नाराज हो जाएगा तो इसका सपोर्ट काम में आएगा, तो फलाने के अंदर उसके अंदर जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का ज्ञान नहीं, तो हमारे भय ने जगहें बदली, एक कंधे से दूसरा कंधा और दूसरे कंधे से पहला कंधा, कंधे बदलते आए, दुख नाश हुआ नहीं, दुख ने कंधे बदले हैं, दुख ने जगहें बदली है। पास हो जाऊं तो शांति, प्रमोशन मिल जाए तो शांति, लाड़ी मिल जाए तो शांति, छोकरा मिल जाए तो शांति, छोकरे को पत्नी मिल जाए तब निराश, और पत्नी को छोकरे की पत्नी, अब सब मिल जाती नहीं, और मिलती तो सबका स्वभाव सेट नहीं होता, स्वभाव सेट नहीं होता तो दादा अपसेट हो जाते हैं, और समझो सेट भी हो गए तो भी आसक्ति ऐसी होती कि मौत सब सेट को अपसेट कर देता है। छोकराओं ने बढ़ावा गणा व्यवस्थित कर दीदा, छोकरा ने घेर छोकरा छे एमने पण सारी रीते दाखल कर दीदा, बधु सेट थई गयो, पण काका तमारे सेट थवानुं बाकी छे, नहीं तो बधु सेट थईलुं अपसेट थई जशे। कबीर कहते तुम अपने को आप में सेट करो, फिर दूसरा तुम्हारे होने मात्र से सेट होने लगेगा, दूसरा सेट हुआ तो भी अपसेट, और अपसेट है तो भी अपसेट है। जगत का कोई काम हम पूरा कर लें तो भी अधूरा है, अधूरा तो अधूरा है ही है, लेकिन जिसको हम लोग पूरा मानते हैं वो भी अधूरा है। वह आखो दाड़ो काम करे, रात पड़े सासू ना पग दाबे, सासू के पति को के आबा रोटला कर्या, अजवाड़ गयो, वासण उठ्या, छोकरा ने सुवड़ाई दीधा, पति ने पण दवा आपवानी थी, आपी दीधो, बधुं निरात, बधुं काम पति को। सवार थाय के केम काम पति क्यों, के बधुं बाकी छे, चा करवी बाकी छे, कप धोवा बाकी छे, छोकरा ने नवराना बाकी छे। ऐसे ही रोज काम पूरा करके आदमी सोता है, सुबह देखो तो सबका सब अधूरा है। जीवन भर तुम पूरा करते करते मर जाते, फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत की आश हमें निराशा में गिरा देती है। बहुत है नहीं, बहुत के पीछे जो एक है उसका जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक बहुत विषय, बहुत इंद्रियों का। अब इंद्रियां तो हमारे पास पांच है, आंख एक है लेकिन उसके विषय अनेक, रंग अनेक, कान एक है, श्रोत्र इंद्रिय एक है लेकिन उसके शब्द अनेक हैं, नाक एक है, गंध अनेक है, जीव एक है, रस अनेक है। तो ये कुल पांच विषय, पांच विषय अलग अलग हैं, लेकिन पांचों विषयों को प्रकाशने वाला तो एक है। जिसने रूप को देखा उसने रस को देखा, जिसने रस को देखा उसी ने गंध को देखा, जिसने गंध को देखा उसी ने शब्द को सुना, तो ये सुनने वाला तो एक है। जिसने सुख को देखा उसने दुख को देखा, जिसने मित्र की वृत्ति को देखा उसी ने शत्रु की वृत्ति को देखा। तो मित्र और शत्रु ये तुम्हारी वृत्तियों का खेल है, तुम स्वरूप का ख्याल करो। आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्चते। योग में आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है। कर्म करते करते अंतःकरण जब शुद्ध होता है, कर्म केवल ऐसा नहीं कि किसी को मकान दिलाया, ये करा वो करा, भक्ति करना भी एक कर्म है, ध्यान करना भी एक कर्म है, जप करना भी एक कर्म है, दूसरे के आंसू लूस लेना वो भी एक कर्म है। ऋषि दयानंद जा रहे थे, रास्ते में चौमासे के दिन थे, एक बैलगाड़ी की चढ़ में फंस गई थी, लोग घेरा डाल के खड़े हो गए थे, सब सुझाव देते थे ऐसे निकालो ऐसे निकालो, बेट हटाओ, ये करो वो करो, बैल ज्यो ज्यो जोर मारते थे त्यों त्यों गाड़ी के पहिए अंदर घुसते जाते, बैल के मुंह से फीन और लार निकलने लगी। ऋषि दयानंद ने देखा कि सब सुझाव देते हैं, काम बिगड़ रहा है, बैलों को खोल दिया, अपने पास जो परकित धोती थी उसको बांध के कमर में गाड़े को खींच के बाहर निकाल दिया, फिर चल दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग प्रशंसा करने लगे, महाराज तुमने बहुत काम किया, ये क्या वो क्या, बोले क्या किसने किया कौन किया, आ गई लहर हो गया, इसने किया जिसने किया उसने किया, और जिसका हुआ हुआ, उसमें मैं और तुम क्या होते। तो बुद्ध पुरुष के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए, समझदार संत के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए हमारी नजरों में, लेकिन उनसे तुम पूछो कि तुम क्या करते हो, वो करता है तो फिर वो संत नहीं, और संत है तो करता नहीं। हम तो गुलाम नबीर के भाई हैं, गुलाम नबीर जा रहा था रास्ते से, पूनम की रात थी, कहीं नजर पड़ी कुएं में, देखा कि अरे रमजान के महीने और आज चांद फंसा इधर कुएं में, चांद फंस गया। बोले तू कुएं में फंस गया यार, हमारी जाति वाले सब भूखे मरेंगे, बाहर निकल। खूब डांटा फटकारा, पत्थर मारे, बाहर निकल नहीं तो पिटाई करूंगा। चांद कुएं में से बाहर निकले भी कैसे। गुलाम नबीर ने कहा तू नहीं निकलेगा, लेकिन मैं तुझे निकाले बिना जाऊंगा भी नहीं, और रोजा भी मैं भी नहीं खोलूंगा, और लोग भी नहीं खोलेंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं कि तुझे छोड़ दूं, मैं बड़ा कार्य करता हूं, मैं विशेष आगेवान हूं, तेरे को बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा। महाराज रस्सा वस्सा इकट्ठा किया और फांसा लगाया, डाला कुएं में, पानी हिला, बोले अब हिलता है घबराता है लेकिन बाहर नहीं आता है, जरा सा तो मान। आटलो घबराए से तो ही मानतो नहीं, कांपे से तो ही नहीं मानतो। महाराज हर एक की दुनिया अपनी अपनी होती है, जगत कैसा है मत कहो, दुनिया कैसी है उसका कोई बयान मत करो, देखने वाला कैसा है, जैसा देखने वाला है उस समय जगत ऐसा है। कीड़ी की नजर में जगत अपना, कौवे की नजर में जगत निराला, हाथी की नजर में जगत निराला, मच्छियों का जगत निराला, चूहों का जगत निराला, संसारियों का जगत निराला, साधक का जगत निराला। कोई जैनी जा रहा है और उसने देखा किसी सन्यासी को, उसके लिए वो साधु साधु नहीं। जैनी के पास कोई बुद्ध पुरुष बैठा है, जैनी के पास कोई कबीर बैठा है, जैनी का कबीर की अपनी मान्यता है, कबीर का अपना अनुभव है, और जैनी गोएका के साधु तो उसको कहेंगे जो कुमती बांधे, उबला हुआ पानी पिए और घर बार छोड़ा हुआ हो, नंगे पैर हो। कबीर न नंगे पैर है, न उबला हुआ पानी पीते, न घर बार छोड़ा है। जैनी की नजर में कबीर कबीर नहीं है, नानक कोई संत नहीं है। ऐसे ही वागरी के पास से कोई नानक गुजर जाए अथवा कोई जैनी फकीर सच्चा संत गुजर जाए, ठीक से आ तो घरा पगे पर तो खोए पिन आवा थे कि हमें तो मर है रे माय बाप, मेरो बावा थे जो मजा। उसके लिए साधु होना, लड्डू खाने के लिए साधु होना, उसके लिए साधु होना कोई लक्ष्य नहीं है। तो वागरी की दृष्टि अपनी है, जैनी की दृष्टि अपनी है, हिंदू की दृष्टि अपनी है, मुसलमान की दृष्टि अपनी है, और हिंदुओं में भी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी निगाह है। एक कुटुंब में पांच आदमी और पांचों आदमी की अपनी अपनी निगाह से वो संत को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि ऐसी ही सृष्टि होती है, जिस काल में जैसी दृष्टि उस काल में ऐसी सृष्टि। अपने आश्रम के साधक जो भूतपूर्व मिनिस्टर जानते ना, कर्शन भाई ने मेरे को कहा एक बार कि बापू आ तो ठीक छे, लीलासा बापू ना दर्शन थयाने वाली आप मळ्या छो, ए पहला तो मारी का एक दृष्टि जुदी हती, हूं आ साधुन जो तो એટલે મને આમ મારું લોહી આમ ઉકળવા માંડતું કે દેશ નું જો સત્યાનાશ કર્યો તો આ ભાવે જ કર્યું છે, દેશ નું જો સત્યાનાશ થયો હોય તો આ સાધુએ જ કર્યો છે એવું થતું, એમને જોઈને આમ જાણે શું થાય। હવે ખબર પડી કે સાધુ ના હોય ને તો સંત ન હોતે સંસાર મેં તો જલ મરતા સંસાર, મિનિસ્ટર હતો ને હજારો વિચ્છીઓ કડે દરરોજે, છાપામાં કઈ આવે, બીજું કઈ થાય, વિરોધીઓ કઈ થાય તો આમ આમ થતું, પણ હવે વેદાંત નું સત્સંગ સાંભળે પછી કહેવાય કે સંત ના હોય ને તો ખરેખર જીવવાની મજા નથી, મરવાની મજા નથી। હવે મારો અનુભવ છે, હવે કયો અનુભવ સાચો, અને અત્યારની એ સીમા છે। वो कोई समय था जिस समय साधु ऐसे लगते, आप बोलते हैं कि वो पहले की दृष्टि हमारी छोटी थी, लेकिन और कुछ ऊंचे बढ़ोगे तो आज भी जो तुम्हारी मान्यता है वो भी कुछ छोटी दिखेगी। तो जैसे जैसी तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाती है, जितनी जितनी वासनाएं कम होती जाती है, इच्छाएं कम होती जाती है, और आप अपने आप में आते रहते हो, घर में आते रहते हो, उतना उतना आपको ख्याल होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है, सत्संग कितना मूल्यवान है, और फकीर का शब्द कितना मूल्यवान है। गुलाम नबीर ने क्या करा जरा बता दूंगा, फांसा डाला, खूब हिलाया, फिर वो आपड़े डोल बोल फसाई जाए तो बिलाड़ी ना फेरवी अंदर, एवी रीते पेलो फांसो फेरव्यो, अने फेरवता कोई चट्टान में फस गया वो फांसा। गुलाम नबीर के यार अब तो तेरे को फसाया तो है, निकाल के छोड़ूंगा, जोर मारा, अब चट्टान से जोर क्या चलता है, बोले कुछ भी हो मैं तेरे को निकाल के छोड़ूंगा। खूब खेचे, लेकिन वो चट्टान भी चट्टान थी, कोई भारी थी, महाराज निकल नहीं रहा, पसीना पसीना करो, बोले मैं मर्द की औलाद, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, अब तू कौन है, माँ क्या है, दूध क्या है तू नहीं जानता, केवल सुना सुनाया है माँ का दूध पिया है, ये सब अहंकार के खेल हैं, मैं मारी मानो दूध पी दूच, आई जाते तारे बानो दूध पी दो तो। महाराज दो पांच दस झटके मारे, और झटके मारे तो रस्सी टूट गई, और पीठ के बल से वो बेचारा जागिरा तो मूर्छित हो गया। कुछ घड़ियों के बाद मूर्छा खुली और आंख खोली, देखा कि आकाश में आया, बोले ठीक है थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन तेरे को लाके मैंने रख दिया, मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूं। तो जो अपने आप में नहीं होता उसको मन कितने कितने धोखे देता है। फिर गुलाम नबी हो कि गेमल हो, किसी जाति व्यक्ति की बात नहीं है, जब तक हम अंतर्मुख नहीं हुए, जब तक कार्य और कारण भाव को हमने नहीं जाना, तो घटना घटेगी प्रकृति में अनुकूल और थोप लेंगे मैंने किया, होगी प्रतिकूल कर देंगे कि इसने किया। महात्मा बुद्ध का कोई शिष्य जा रहा था, शिष्य का शिष्य दोनों जा रहे थे, एक सांप तड़प रहा था पेड़ के नीचे, पास में कहीं थोड़ा दूरी पर तालाब था, वो सांप तड़फा तड़फा न मरता है न जीता है, कीड़ियों ने घेर लिया है, और ऐसी बुरी हालत। शिष्य ने देखकर गुरु से पूछा कि भगवान इसने ऐसा तो कौन सा कर्म किया होगा, इतना तड़फ रहा है और कीड़ियां उसको इतनी चिपक गई है, अधमुआ हो गया, न मरता है न जीता है, इसको देखकर बड़ी करुणा होती। गुरु ने कहा कि कुछ महीने पहले अपने यहां से गुजरे थे और तुझे याद होगा, एक मच्छीमार तालाब पर मच्छियां मार रहा था जो सामने तालाब है, और तूने उसे रोका भी था, हिंसा मत कर, मत कर्म की जाल बुन, लेकिन उसने तेरी बात उड़ा दी और हंस लिया। वही मच्छीमार सांप हुआ है और वो जो मच्छियां है वो कीड़ियां हुई और एक दूसरे को सताते हैं, उसने उनको सताया, उनको सताता, कर्म की गति चालू है, कर्म नाश नहीं हुए। वो मच्छियों को आटा डालता तो मच्छियां और ही कुछ बनकर उसको भी खिला देती, लेकिन खाने वाला और खिलाने वाला दोनों की यात्रा चालू रहती, अंत नहीं होता जन्म मरण के चक्कर का। अशुभ तो बांधता है लेकिन शुभ का कर्तृत्व भी बांधता है। कर्म किए बिना रह तो नहीं सकते, कर्म तो करना है लेकिन कर्तृत्व तो तुम्हारे में नहीं आए। देखा आंख ने लेकिन आरोप कर लिया मैंने देखा, सुना है कान ने वृत्ति के द्वारा मैंने सुना, सोचा है विचारा है मन ने मैंने विचारा है, निर्णय किया है वृत्ति बुद्धि वृत्ति ने मेरा निर्णय है। तुमने अन्न जल खाया इस शरीर से पसार हुआ ओ जीवड़ा, माता के गर्भ में राके होया, मारो दीकरो पैसो मारो परमेश्वर बैरी मारी गुरु छोकरा छैया सालिग्राम बापजी पूजा कोनी करो के। जीवन इतना अल्प हो जाता है, जीवन इतना नपातुला हो जाता है कि हमको पता ही नहीं कि हम किस लिए जीते हैं। ईमानदारी से देखो तो हर जीव जीता है मुक्त होने के लिए, पढ़ते किस लिए हैं पास होने के लिए, पास किस लिए होना चाहते हैं कमाने के लिए, कमाते किस लिए खाने के लिए, और खाते किसके लिए जीने के लिए, जीते किस लिए हैं मरने के लिए, नहीं मरना कोई नहीं चाहता, चिड़िया भी मरना नहीं चाहती भैया, चूहा भी मरना नहीं चाहता, जीते हैं मुक्त होने के लिए मनुष्य। लेकिन हमारा मुक्त होना कैसे, हमको किसी ने बंधन में डाला नहीं, हमारी मान्यताओं ने हमारी पकड़ों ने हमको बंधन में डाल दिया, हमारी ऐसी प्रकार की पकड़े हो गई, इस प्रकार की मान्यता हो गई, समझते कोई आकाश पाताल में भूत बैठा है, आकाश पाताल में देवी देवता बैठा और वो मुक्त करेंगे। भूत के भय को हटाने के लिए तावीज रख लिया, अब तावीज गुम ना हो जाए उसका भय लगा है। मैंने बताया था वो कहानी, एक आदमी मरने पड़ा, बुलाया अपने धर्म गुरु को, मुल्ला जी को बुलाया, प्रार्थना कर रहा है कि हे खुदा ताला तू मुझे माफ कर देना, जो कुछ हो गया मुझे क्षमा कर देना। थोड़ी देर में बोलता है कि हे शैतान तू भी मुझे माफ कर देना। तो वो धर्म गुरु पूछता है कि ये क्या, घड़ी में शैतान से माफी मांगता है घड़ी में खुदा से माफी मांगता है? बोले पता नहीं, न मैं पूरा शैतान हूँ न मैं पूरा इंसान हूँ, पूरी शैतानियत भी नहीं किया और पूरा मैं ईमानदारी से भी नहीं जी सका। मैं सच कहता हूँ कितना भी धार्मिक आदमी हो, कितना भी सच्चा हो, कितना भी पवित्र हो, फिर भी गहराई में उसको पूर्ण पवित्रता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण तो एक परमात्मा है, कर्ता कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। जानसूत राजा ने सपने में देखा कि हंस कह रहे हैं कि जानसूत का तेज क्या है, मैं तो रैंक मुनि के तेज जो दूसरों को शांति और शीतलता देने वाला है, दूसरों के अहंकार को परमात्मा में मिटाने वाला है, जो दूसरे के सत्ता और सामर्थ्य ईश्वर के साथ एक कराने वाला है, ऐसे रैंक मुनि के तेज में मैं विचरता हूँ, ब्रह्म वेताओं के तेज में विचरता हूँ, जानसूत के तेज में नहीं विचरता हूँ। जानसूत ने सुना, रैंक मुनि के पास गए, 600 अशर्फियां वापस दे दी। रैंक मुनि नाराज हो गए हैं, अब क्या किया जाए, जांच करते करते पता चला कि रैंक मुनि कैसे प्रसन्न हो, आदमी लगा दिए पीछे, जिस हेतु जिस कारणों से रैंक मुनि प्रसन्न हो वे कारण उन्होंने खड़े कर दिए। रैंक मुनि के चरणों में एक घाव भेंट कर दिया, रैंक मुनि का जो जो जैसा रैंक मुनि को अनुकूल लगे ऐसा उन्होंने वातावरण कर दिया और रैंक मुनि रैंक पर्ण नाम गांव का रख दिया। कहा कि भगवान अब ये गांव तो मैंने आपके चरणों में अर्पण किया और मेरा सिर आपके चरणों में अर्पण है, मैं और मेरा राज्य कुछ भी नहीं है ब्रह्म विद्या के आगे। तब रैंक मुनि प्रसन्न हुए कि ये अपनी मान्यता छोड़ना चाहता है, रैंक मुनि को गांव की जरूरत क्या, रैंक मुनि ने कहा कि राजन तू अन्न धन ये देकर सबको अपना मानना चाहता है या सबको मैं खिलाता हूँ, लेकिन सबके अंदर जो बैठा है उसमें यदि तू स्थिर हो जाएगा तो तेरे को अनुभव होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं उत्पत्ति और पालन करता हूँ, मैं इतना महान हूँ, ऐसा तुझे ज्ञान हो जाएगा। बाहर के साधनों से तू दाता बनकर तेरी असीमता में तू नहीं पहुंचेगा। बाहर के धन से तू पूर्ण धनी नहीं होगा। बाहर की सत्ता से तेरी पूरी सत्ता नहीं होगी। बाहर के राज्य से तेरा पूरा राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज्य मिलियो अविनाशी। तुम उस अचल को जान लो, फिर अचल की सत्ता से ब्रह्मा भी चल रहे हैं, विष्णु भी चल रहे हैं, महेश भी चल रहे हैं। उस अचल चैतन्य का अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा ये धन जान सुख संपत्ति जो ससीम है वो तुम्हें असीम मालूम होगी। तुम्हारा शरीर न होते हुए भी तुम रहते हो और तुम ऐसे अखुट हो, तुम ऐसे व्यापक हो कि सच पूछो सब तुम्हारा ही खाते हैं और सब तुम्हारे में ही जीते हैं। तुम इतने व्यापक साक्षात्कार होता है तब बुद्ध पुरुषों का यह अनुभव नहीं होता कि मेरा इतना आश्रम है, मेरे 2000 शिष्य हैं, अभी 50,000 शिष्य हुए, फिर 50 लाख होंगे और 50 लाख शिष्यों का मैं गुरु। नहीं, जब तक ऐसा याद है उसको मैं 50 लाख शिष्यों का गुरु हूँ तब तक वो महात्मा नहीं, वो नेता है, धर्म का नेता हो सकता है। महात्मा को तो 50 लाख की सीमा नहीं होती, 50 करोड़ की सीमा नहीं, ये जगत नहीं, लेकिन इससे भी अनंत अनंत जो जगत है उन सब जगतों का जो आधारभूत है वो महात्मा का अधिष्ठान, महात्मा का अपना अनुभव है। महात्मा को अनुभव है कि तमाम तमाम आकाश गंगाएं मुझ में है, तमाम तमाम सूर्य मुझ में है, तमाम तमाम चांद मुझ में है, तमाम तमाम दुनिया मुझ में है और मैं उनमें हूँ। वे बदल जाते, नाश होते, लेकिन मैं नाश नहीं होता हूँ। आशाराम नाश हो सकता है लेकिन मैं नाश नहीं होता। महात्मा का अनुभव बड़ा अनूठा हो जाता है।